एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर से स्वागत। मैं हूँ आपका पहला मेजबान
और मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को सुबह जल्दी उठने के लिए इंस्पायर किया है।
हाँ, रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब।
बिल्कुल।
और देखिए, ये सिर्फ सुबह उठने की बात नहीं है,
है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये किताब ऐसे समय में आई है जब हम सब, मतलब विकर्षणों से, काम के अंतहीन दबाव से और एक बेहतर, ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी की तलाश में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं।
सही कहा।
तो सवाल ये उठता है कि क्या सुबह के वो पहले कुछ घंटे, क्या वो वाकई हमारी जिंदगी बदल सकते हैं?
यही तो बड़ा सवाल है।
और
ये किताब दावा करती है कि हाँ, बदल सकते हैं, कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये तो मतलब एक पूरा दर्शन है। असाधारण प्रोडक्टिविटी, गहरी शांति, यहाँ तक कि एक स्थायी विरासत बनाने का तरीका।
तो क्या ये सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प फॉर्मूला है या इसमें सचमुच कुछ गहरा है?
आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारा मिशन है इसके सबसे जरूरी आइडियाज को समझना और देखना कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने काम आ सकते हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं।
बढ़िया, तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखक से। रॉबिन शर्मा कोई अनजान नाम तो है नहीं?
बिल्कुल नहीं, एक जाने माने लीडरशिप एक्सपर्ट हैं, लेखक हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा कि वे पहले एक सफल वकील थे।
हाँ, अपना जमा-जमाया करियर छोड़ दिया उन्होंने।
बिल्कुल, ताकि लोगों को उनकी जो असल क्षमता है उस तक पहुंचने में मदद कर सके।
उनकी पहली किताब भी बहुत चली थी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी।
हाँ, वो तो क्लासिक है। शर्मा की खासियत ये है कि वो सिर्फ थ्योरी नहीं बताते। जैसा मैंने कहा, उन्होंने दुनिया के कई टॉप सीईओज, अरबपतियों, एथलीट्स को पर्सनली कोच किया है।
मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है।
हाँ, तो उनकी बातें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि असल दुनिया के अनुभवों पर आधारित हैं। वो अपनी किताबों में क्या करते हैं, प्राचीन ज्ञान, मॉडर्न साइंस और टॉप परफॉर्मर्स की आदतों का एक मिक्सचर सा पेश करते हैं।
सही कहा, वे एक प्रैक्टिशनर हैं जिन्होंने इन आइडियाज को खुद काम करते देखा है। और उनकी लिखने की शैली भी काफी प्रेरक है, कहानियां हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, मोटिवेशनल भाषा है।
हाँ, और कहते हैं कि द 5 AM क्लब उनके 20 साल से ज्यादा के कोचिंग अनुभव का एक तरह से निचोड़ है।
तो किताब आखिर है क्या ये?
ये ना एक कहानी और सेल्फ हेल्प गाइड का मिला जुला रूप है। इसमें एक फिक्शनल कहानी है जिसके जरिए लेखक सुबह जल्दी उठने और एक अनुशासित मॉर्निंग रूटीन अपनाने के फायदे बताते हैं।
ओके।
शर्मा का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि दुनिया के सबसे कामयाब और हाँ, संतुष्ट लोग भी अपने दिन की शुरुआत इसी तरह करते हैं।
और किताब का मूल मंत्र क्या है, एक लाइन में?
एक लाइन में, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ।
अपनी सुबह को जीतो, अपने जीवन को उठाओ।
बिल्कुल, शर्मा कहते हैं कि दिन का पहला घंटा, जिसे वो विजय घंटा कहते हैं, द विक्ट्री आवर, वो एक जादुई समय होता है।
जादुई कैसे?
क्योंकि उस समय दुनिया शांत होती है ना? हमारा दिमाग सबसे ज्यादा तरोताजा होता है, सीखने के लिए तैयार होता है। और अगर इस विजय घंटे का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और हाँ, स्पिरिचुअल हेल्थ को भी बेहतर बना सकता है।
तो ये कहानी के जरिए समझाया गया है?
हाँ, किताब में कहानी है, एक स्ट्रगल कर रही एंटरप्रेन्योर है, एक थोड़े निराश आर्टिस्ट हैं और एक रहस्यमयी अरबपति हैं, स्टोन रिले।
अच्छा।
मॉरिशस, रोम, इंडिया, ब्राजील।
वाह, वर्ल्ड टूर।
हाँ, कुछ वैसा ही। और वहां वो उन्हें 5 AM क्लब के सिद्धांत सिखाते हैं। कहानी से किताब थोड़ी रोचक बन जाती है, वरना सिर्फ नियम बताना शायद थोड़ा उबाऊ हो जाता।
हाँ, बात तो सही है।
तो किताब का लक्ष्य साफ है, पढ़ने वालों को उन टॉप 5% लोगों की कैटेगरी में लाना जो अपनी जिंदगी में असाधारण नतीजे पाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो औसत से ऊपर उठना चाहते हैं, अपनी असली काबिलियत को अनलॉक करना चाहते हैं।
ठीक है, तो चलिए अब इसके जो मुख्य विचार हैं उनमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं।
जरूर। कहानी शुरू होती है एक पर्सनल डेवलपमेंट सेमिनार से। हमारी एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों अपनी जिंदगी से थोड़े हताश हैं। तभी स्टोन रिले, जो पहले देखने में एक बेघर आदमी जैसे लगते हैं, सामने आते हैं और उन्हें मॉरिशस आने का न्योता देते हैं।
ओके, थोड़ा अजीब है।
हाँ है, पर वो जाते हैं और मॉरिशस पहुंचकर पहला सबक मिलता है 5 AM क्लब का मूल दर्शन।
क्या है वो दर्शन?
रिले वहां 3 चरणीय सफलता सूत्र बताते हैं। बेहतर जागरूकता यानी बेटर अवेयरनेस,
ठीक है,
उससे बनते हैं बेहतर विकल्प, बेटर चॉइसेस,
हाँ,
और बेहतर विकल्पों से मिलते हैं बेहतर परिणाम, बेटर रिजल्ट्स।
सुनने में तो काफी आसान लगता है।
लगता है, लेकिन असल बात यह है कि महानता कोई किस्मत की बात नहीं है, वो रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। यही कोर आइडिया है।
और यहीं पर वो मशहूर फॉर्मूला आता है, है ना, 20-20-20।
हाँ बिल्कुल, ये किताब का शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। ये सुबह के विजय घंटे यानी 5 से 6 बजे को 3 20-20 मिनट के हिस्सों में बांटने का तरीका है।
अच्छा, तो पहला 20 मिनट क्या है?
पहला 20 मिनट 5:05 AM है, मूव, हलचल,
मतलब एक्सरसाइज।
हाँ, लेकिन तेज कसरत जिससे पसीना आए, दौड़ना, रस्सी कूदना, हिट, कुछ भी चलेगा। इसके पीछे साइंस भी है।
क्या साइंस है?
इससे ना BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है। इससे आप दिमाग का फर्टिलाइजर समझ सकते हैं। सीखने और याददाश्त के लिए बहुत जरूरी है।
अच्छा।
और साथ ही स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और फोकस बढ़ता है।
ओके। तो 20 मिनट पसीना बहाना।
हाँ।
उसके बाद
अगला 20 मिनट है रिफ्लेक्ट, चिंतन।
ये शांति का समय हुआ।
बिल्कुल, इसमें आप जर्नलिंग कर सकते हैं, अपने विचार, अपनी भावनाएं लिख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, या बस आने वाले दिन की प्लानिंग कर सकते हैं।
इसका मकसद क्या है?
मन को शांत करना, ग्रैटिट्यूड महसूस करना और दिन के लिए एक क्लैरिटी लाना।
ठीक है, मूव, रिफ्लेक्ट और तीसरा
और आखिरी 20 मिनट 5:40 to 6 AM है ग्रो, विकास,
यानी सीखना।
हाँ, ये सीखने का समय है। कोई किताब पढ़ना, कोई ज्ञान बढ़ाने वाला पॉडकास्ट सुनना, कोई ऑनलाइन कोर्स करना या अपनी फील्ड से जुड़ी कोई नई चीज सीखना, ये पक्का करता है कि आप रोज कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये 2020 फॉर्मूला सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? सुबह 5 बजे उठकर इतनी सारी चीजें करना मुझे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
मुश्किल तो है, खासकर शुरुआत में, इसमें कोई शक नहीं, और शर्मा इस बात को मानते भी हैं।
अच्छा।
हाँ, इसीलिए वो आगे आदत स्थापना प्रोटोकॉल यानी हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल की बात करते हैं। ये कहानी में आगरा में सिखाया जाता है।
आगरा में? दिलचस्प।
हाँ, और इसके मुताबिक किसी भी नई आदत को पूरी तरह से अपनाने में, मतलब ऑटोमेटिक बनाने में, करीब 66 दिन लगते हैं।
66 days? मैंने तो हमेशा 21 दिन सुना था।
हाँ, वो 21 दिन वाली बात काफी पॉपुलर है, लेकिन शर्मा कहते हैं कि 66 दिन ज्यादा वास्तविक हैं। रिसर्च भी कुछ ऐसा ही दिखाती है, और ये 66 दिन भी 3 स्टेज में बटे हैं।
अच्छा, कौन कौन सी स्टेज?
स्टेज 1 है विनाश, दिन 1 से 22। ये सबसे मुश्किल है। पुरानी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, नई आदत बोझ लगती है, बहुत इच्छा शक्ति चाहिए होती है इस फेज में।
समझ आता है।
स्टेज 2 है स्थापना, दिन 23 से 44। यहाँ थोड़ी आसानी होती है, लेकिन कन्फ्यूजन रहता है, दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बन रहे होते हैं। यहाँ टिके रहना बहुत जरूरी है, छोड़ने का मन कर सकता है।
ओके।
और स्टेज 3 है एकीकरण, दिन 45 से 66। अब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगती है, वो नेचुरल लगने लगती है, आसान लगती है, और आपको असल में एनर्जी देती है।
ये 66 दिन का फ्रेमवर्क जानना तो काफी मददगार हो सकता है, खासकर जब हम नए साल के रेजोल्यूशन लेते हैं और कुछ ही हफ्तों में हिम्मत हार जाते हैं।
बिल्कुल, ये बताता है कि शुरुआती मुश्किल नॉर्मल है, उससे घबराना नहीं है।
सही बात है।
किताब में एक और बहुत जरूरी विचार है, 4 आंतरिक साम्राज्य, 4 इंटीरियर एम्पायर्स।
4 आंतरिक साम्राज्य, ये क्या है?
शर्मा का असली इनसाइट यहाँ ये है कि बाहरी सफलता सिर्फ माइंडसेट का खेल नहीं है। सच्ची मास्टरी के लिए हमें 4 अंदरूनी पहलुओं पर काम करना होगा।
कौन से 4?
पहला है माइंडसेट, मानसिकता, हमारे विचार, विश्वास, फोकस, ये तो हम सब जानते हैं।
हाँ।
दूसरा है हार्टसेट, भावनात्मकता, हमारी भावनाएं, मुश्किलों से उबरने की क्षमता यानी रेजिलियंस, इमोशनल इंटेलिजेंस।
ओके, हार्टसेट।
तीसरा है हेल्थ सेट, शारीरिक स्वास्थ्य, हमारी सेहत, एनर्जी, जीवन शक्ति,
ये भी जरूरी है।
और चौथा जो अक्सर छूट जाता है वो है सोल सेट, आध्यात्मिकता, हमारा उद्देश्य, हमारे मूल्य, हमारी आंतरिक शांति, किसी बड़ी चीज से जुड़ाव महसूस करना।
माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट, ये बात बहुत गहरी है। अक्सर हम सिर्फ दिमाग या ज्यादा से ज्यादा सेहत पर ध्यान देते हैं।
हाँ बिल्कुल, भावनाओं को या आत्मा की शांति को नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर हमारे भारतीय संदर्भ में देखें तो, जहाँ करियर और बाहरी सफलता पर इतना जोर होता है, वहाँ हार्ट सेट और सोल सेट अक्सर पीछे छूट जाते हैं।
सही का, तो शर्मा का ये जो होलिस्टिक अप्रोच है ये महत्वपूर्ण है।
बहुत ज्यादा। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, रोम और ब्राजील जाती है जहाँ कुछ और एडवांस्ड स्ट्रेटेजी सिखाई जाती हैं।
जैसे कि
इनमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग है, उत्कृष्ट प्रदर्शन के जुड़वा चक्र,
ट्विन साइकल्स।
हाँ, ये आजकल की जो हमेशा व्यस्त रहो या हसल कल्चर वाली सोच है ना, उसको चैलेंज करती है।
जैसे?
इसका मतलब है कि टॉप परफॉर्मर्स सिर्फ लगातार कड़ी मेहनत ही नहीं करते, बल्कि वे इंटेंस फोकस वाले काम, जिसे वो हाई एक्सेलेंस साइकिल कहते हैं, और जानबूझकर किए गए गहरे आराम और रिकवरी, जिसे डीप रिफ्यूलिंग साइकिल कहते हैं, के बीच एक संतुलन साधते हैं।
मतलब काम के साथ आराम भी उतना ही जरूरी है।
शर्मा कहते हैं कि आराम कोई लग्जरी नहीं, बल्कि टॉप परफॉर्मेंस के लिए एक जरूरत है, एक नेसेसिटी। ये विचार अपने आप में काफी क्रांतिकारी है आज के माहौल में।
वाकई, आजकल तो आराम करने पर गिल्ट महसूस होने लगता है।
बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और छोटे मॉडल्स भी हैं, जैसे टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, मतलब बिना किसी भटकाव के काम करने के लिए एक प्रोटेक्टेड टाइम निकालना, फोन बंद, नोटिफिकेशन बंद,
डीप वर्क जैसा कुछ।
हाँ, कह सकते हैं, या फिर 1991 नियम, अगले 90 दिनों तक अपने काम के पहले 90 मिनट अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट को देना।
अच्छा, ये काफी प्रैक्टिकल लगता है।
हाँ, और एक सेकंड विंड वर्कआउट भी है, मतलब दिन के अंत में एक छोटा सा वर्कआउट ताकि शाम भी एनर्जेटिक रहे।
ओके।
कहानी के अंत में एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट पूरी तरह बदल जाते हैं और रिले भी अपने जीवन का एक गहरा राज खोलते हैं, जो विरासत और दुनिया पर पॉजिटिव असर डालने के महत्व पर जोर देता है।
तो अगर इस पूरी किताब के जो मुख्य संदेश हैं, उन्हें समेटने की कोशिश करें, तो क्या बातें उभर कर आती हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो वही है, सुबह के उस पहले घंटे की शक्ति और पवित्रता, वो शांति और दिमाग की सीखने की बड़ी हुई क्षमता, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, वो वाकई खास है।
हाँ। दूसरा, वो चार आंतरिक साम्राज्यों के जरिए खुद पर पूरी तरह महारत हासिल करना, सिर्फ एक पहलू पर नहीं बल्कि माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट, चारों पर ध्यान देना, ये एक संतुलित और सस्टेनेबल सफलता की नींव है।
बिल्कुल। तीसरा, काम और आराम का संतुलन, ट्विन साइकिल्स, लगातार मेहनत से ज्यादा जरूरी है सही समय पर मेहनत और सही समय पर आराम, बर्नआउट से बचने और लंबे समय तक टिके रहने के लिए ये बहुत जरूरी है।
चौथा, वो कैपिटलाइजेशन आईक्यू वाली बात, यानी अपनी प्रतिभा को नतीजों में बदलने की क्षमता, सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, उसे अनुशासन के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है।
हाँ, हम सब जानते हैं ऐसे कितने प्रतिभाशाली लोग हैं जो अनुशासन की कमी से पीछे रह जाते हैं।
सही। पांचवा, आदत बनाने का विज्ञान, वो 66 दिन, ये हमें बताता है कि बदलाव एक प्रोसेस है, इसमें समय लगता है और मुश्किल फेज नॉर्मल है, इससे हमें टिके रहने की प्रेरणा मिलती है।
छठा, विकास के लिए मुश्किलों को अपनाना, आरामदेह दायरे से बाहर निकलना जरूरी है, सुबह 5 बजे उठना मुश्किल है, पर शायद इसीलिए ये फायदेमंद भी है।
और सातवां?
सातवां, विरासत और योगदान, कि सफलता सिर्फ पैसा कमाना या मशहूर होना नहीं है, बल्कि दुनिया पर एक सकारात्मक छाप छोड़ना और एक सार्थक जीवन जीना है, एक मीनिंगफुल लाइफ।
सही है। इस किताब में कोट्स भी काफी है ना, यादगार पंक्तियां।
हाँ, बहुत सारी हैं, जैसे कि इसका मूल मंत्र ही ले लीजिए, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ, अपनी सुबह जीतो, अपनी जीवन को ऊंचा उठाओ। कितना सीधा और कितना पावरफुल संदेश है।
बिल्कुल। और वो वाली पंक्ति भी बहुत असरदार है, ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड, सभी बदलाव शुरुआत में कठिन, बीच में अव्यवस्थित और अंत में भव्य होते हैं।
हाँ, ये 66 दिन वाली बात को कितनी खूबसूरती से कहती है ना, ये हमें सब्र रखने की याद दिलाती है।
और आज के डिजिटल युग के लिए ये वाली तो एकदम सटीक है, एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्शन, ध्यान भटकने की लत आपकी रचनात्मक उत्पादकता की मौत है।
ओह, ये तो बिल्कुल सच है, फोकस बनाए रखना आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं।
ये भी, टू हैव द रिजल्ट्स द टॉप 5% ऑफ प्रोड्यूसर्स हैव, यू मस्ट स्टार्ट डूइंग What 95% of people are unwilling to do.
शेष 5% लोगों जैसे परिणाम पाने के लिए आपको वह करना शुरू करना होगा जो 95% लोग करने को तैयार नहीं है। ये बताती है कि असाधारण बनने के लिए असाधारण प्रयास लगते हैं, आसान रास्ता नहीं होता।
तो ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, सिद्धांत समझ आ गए, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें, कोई प्रैक्टिकल टिप्स?
हाँ, किताब कहती है रात को तैयारी करें, अगले दिन के कपड़े निकाल कर रखें, अपना जर्नल या डायरी तैयार रखें, अलार्म को थोड़ा दूर रखें ताकि उठना ही पड़े।
ओके, रात की तैयारी जरूरी है। और वो 20-20-20 को कैसे अपनाएं? क्या पूरे 20 मिनट करना जरूरी है शुरू में?
नहीं, बिल्कुल नहीं, शुरुआत छोटी हो सकती है।
अच्छा,
हाँ, मूव के लिए 10-15 मिनट तेज चलना या घर पर ही कुछ जंपिंग जैक्स, योगा, कुछ भी जिससे थोड़ी सांस फूले।
ठीक है।
रिफ्लेक्ट के लिए 5 मिनट शांत बैठना, गहरी सांस लेना, आज के लिए 3 अच्छी बातें सोचना या लिख लेना, या दिन की मोटी मोटी योजना बना लेना। और ग्रो के लिए 10-15 मिनट कोई अच्छी किताब का एक पैरा पढ़ लेना, कोई ज्ञानवर्धक वीडियो देख लेना, या कुछ भी नया सीख लेना। स्टार्ट स्मॉल।
ठीक है, छोटी शुरुआत। और वो 4 साम्राज्यों पर रोज कैसे काम करें, ये तो बड़ा कॉन्सेप्ट लगता है।
उसे भी छोटे स्टेप्स में सोच सकते हैं। माइंडसेट के लिए दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव अफर्मेशन या विचार से करें। हार्ट सेट के लिए दिन में एक बार रुककर खुद से पूछें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, अपनी भावनाओं को बस स्वीकारें।
ओके।
हेल्थ सेट के लिए सुबह की कसरत के अलावा थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दें और नींद पूरी करने की कोशिश करें। और सोल सेट के लिए शायद बालकनी में 5 मिनट खड़े होकर पौधों को देखें या वो म्यूजिक सुने जिससे आपको खुशी मिलती हो। बहुत छोटी चीजें भी हो सकती हैं।
हाँ, ये प्रैक्टिकल लग रहा है। और प्रोफेशनल लाइफ में भी सुबह जल्दी उठकर अपना सबसे जरूरी काम निपटा लेना, वो 90-90 का नियम।
हाँ, या कुछ देर बिना डिस्टर्बेंस के काम करना, ये बहुत बड़ा फर्क ला सकता है प्रोडक्टिविटी में।
तो कुल मिलाकर ये किताब काफी कुछ देती है सोचने और करने के लिए। अगर आपको इस किताब से एक बात चुननी हो जो सबसे ज्यादा असरदार लगी, तो वो क्या होगी?
मेरे लिए शायद वो आराम पर जोर देना है, वो ट्विन साइकल्स वाली बात। ये हमारी हमेशा दौड़ते रहो वाली संस्कृति के बिल्कुल उलट है, और शायद इसीलिए बहुत जरूरी भी। ये याद दिलाता है कि रुकना भी आगे बढ़ने का ही एक हिस्सा है। ये मुझे काफी रेजोनेट किया।
सही कहा। मेरे लिए वो 4 आंतरिक साम्राज्यों वाला विचार सबसे अहम है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन एक संतुलन है, सिर्फ करियर या सिर्फ सेहत पर ध्यान देना काफी नहीं। और ये भी कि उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस किसी की बपोती नहीं है, सही इरादे और अनुशासन से कोई भी इसे पाने की कोशिश कर सकता है। ये काफी डेमोक्रेटिक सोच है, मुझे पसंद आया।
तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। क्या सुबह का वो पहला घंटा जिसे हम अक्सर नींद में या भागदौड़ में गंवा देते हैं, सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का जरिया है, या उसे वापस पाना हमारे जीवन के गहरे अर्थ, हमारे उद्देश्य और दुनिया से हमारे जुड़ाव को भी नया आकार दे सकता है?
सोचने वाली बात है। और इन विचारों से प्रेरित होकर कल सुबह को एक छोटा सा कदम क्या उठा सकता है? शायद सिर्फ अलार्म 10-15 मिनट पहले लगाना, या उठकर बस 5 मिनट शांति से बैठना। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है ना?
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।